हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जोया और अबीर एक नाजुक से लम्हे में कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक हो पाते, अबीर का फोन बज उठा था और वो दोनों अलग हो गए थे। जोया जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई थी और अबीर अपना फोन चेक करने लगा था और अपनी सौतेली माँ का नंबर देखकर वो हैरान रह गया था। कॉल करने पर उसकी सौतेली माँ ने कहा था कि वो उससे मिलने आ जाएं, सुबह वो उसका इंतजार करेगी। अबीर हैरान था और सुबह उनसे मिलने का इरादा बनाकर सो चुका था। वहीं जोया को भी एक अननोन नंबर से कॉल आया था जो उसे अरहम के ठिकाने के बारे में बताना चाहता था। जोया अरहम का नाम सुनते ही गुस्से से भर उठी थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे ये डिसाइड कर लिया था कि वो उस अनजान आदमी से मिलने जाएगी जो उसे अरहम के बारे में बताना चाहता था। जोया ने अपना फैसला ले लिया था। अब उसे बस किसी न किसी तरह से अबीर राठौड़ के मैंशन से निकलना था। वहीं दूसरी ओर मेहर ने फैसला कर लिया था कि वो अब राजवीर की ज्यादतियाँ नहीं सहेगी और इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि अरमान अपनी ट्रिप से वापस आ चुका है तो वो उससे मिलने चली गई थी और हॉल में एलईडी को टूटा हुआ देखकर वो चौंक गई थी और अरमान के कमरे की ओर बढ़ने लगी थी। जैसे ही उसने सुना कि अरमान ने किसी लड़की का खून कर दिया है और वो उसी के पति यानी राजवीर से इसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए कह रहा था, मेहर ये सुनकर सुन हो चुकी थी और वो दरवाजे से ही उल्टे पांव भागकर अपने कमरे में जा पहुंची थी और सोचने लगी थी कि वो कैसे एक मर्द की शिकायत दूसरे मर्द से कर सकती है, जबकि वो तो औरतों को तकलीफ देने में उससे भी चार कदम आगे था। उसका भाई, उसका पति, सब के सब जैसे दुश्मन बन बैठे थे औरतों के। वो किससे अपना दुख शेयर कर सकती थी? उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दिल का हाल कह सके। ये रास्ता उसने खुद चुना था, सो सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी। ये सोचकर मेहर अपना मन मार कर रह गई थी और एक बार फिर अपने बेड पर औंधे मुंह गिरकर रोने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह जोया और अबीर के लिए नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। अगली सुबह जोया उठी और उसने खुद को आईने में देखा। अभी भी उसके जिस्म पर अबीर की शर्ट थी। जोया गुस्से में अबीर के कमरे से तो आ गई थी, लेकिन उस कॉल के आने के बाद वो चेंज नहीं कर पाई थी और अरहम के जुल्मों को याद करते करते वो सो गई थी। जोया ने काफी दिनों के बाद सुकून से खुद को देखा था। उसकी रंगत इस देश में आने के बाद और भी ज्यादा उजली उजली हो गई थी। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी नीली आंखों को आज तक कभी भी किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ी थी। जोया ने देखा, रात को सोने की वजह से अबीर की शर्ट के पेट के पास के दो बटन खुल चुके थे और उसका पेट वहाँ से दिखाई दे रहा था। अब उसका पेट अच्छा खासा नजर आने लगा था। जोया को इस अनजाहे बच्चे से एक लगाव सा होता जा रहा था और वो बड़े ही प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरने लगी थी और उस पर हाथ फेरते फेरते उसकी आंखों के किनारे भीग चुके थे। और तभी अचानक उसे उस काल के बारे में याद आ गया था और वो अचानक गुस्से से भर उठी थी। अभी वो उस आदमी से मिलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी थी। जोया उस वक्त अर्धनग्न अवस्था में दरवाजा नहीं खोल सकती थी, इसलिए उसने अंदर से ही कहा, कौन बाहर? अकरम खड़ा हुआ था जो जोया को नाश्ते के लिए बुलाने आया था। जोया की आवाज सुनकर अकरम ने कहा, जोया बेटा, मैं हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ ना, नाश्ता कर लो। तुमने कल रात भी कुछ नहीं खाया था बेटा, इस हालत में तुम्हारा ज्यादा देर भूखा रहना ठीक नहीं होगा। जोया ने अकरम की फिक्र भरी आवाज सुनी और राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा था कहीं अबीर न वहाँ आ गया हो। ना जाने क्यों जोया को अब अबीर के सामने जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन उसे काफी शर्म आ रही थी। अंदर से कोई जवाब न पाकर अकरम ने एक बार फिर जोया का दरवाजा खटखटाया और बोला, बेटा तुम सुन रही हो या नहीं? तभी जोया अपनी सोच से बाहर आई और बोली, जी 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 भाई, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। जोया की बात सुनकर अकरम को थोड़ी तसल्ली हुई और वो ओके बेटा जल्दी आओ कहकर चला गया। और अकरम के जाने के बाद जोया जल्दी से बाथरूम में घुस गई और नहाने लगी और उसने अबीर की शर्ट को बेदर्दी से अपने जिस्म पर से खींचा और फेंक दिया और जल्दी से नहाकर बाहर निकल आई और जल्दी से अपने वार्डरोब की ओर गई और वो हैरान रह गई। उसका वार्डरोब बेहद खूबसूरत कपड़ों से भरा पड़ा था। जोया चौंक गई थी और तभी उसे याद आया उसका वार्डरोब अबीर ने सेट करवाया था। सो जितने भी खूबसूरत इंडियन ड्रेसेस थे अबीर ने सब के सब खरीद कर जोया की अलमारी में रखवा दिए थे। उन सब कपड़ों में एक लाइट पिंक कलर का अनारकली फ्रॉक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था। जोया ने उसे छुआ, वो बिल्कुल कॉटन की तरह से सॉफ्ट था। एकदम मखमली सा कपड़ा था उसका। उसका जोया खुद को उस ड्रेस को पहनने से नहीं रोक पाई और उसने उसे उठा लिया और जल्दी से पहनकर खुद को आईने में देखने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए बनाया गया हो। जोया की स्किन उस पिंक फ्रॉक को पहनकर और भी ज्यादा खिल गई थी। जोया ने जरा सा एहतराम ये किया कि उसने अपनी नीली आंखों में हल्का सा काजल लगा लिया और उसके लिप्स तो कुदरती पिंक थे, उन्हें किसी लाली की जरूरत ही नहीं थी। जोया ने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने कंधों पर फैलाया और जल्दी से नीचे की ओर जाने लगी। अबीर सुबह उठते ही रेडी हो चुका था। जोया का एहसास अभी भी उसके कमरे में मौजूद था, जिसके बारे में सोच सोचकर वो ब्लश किए जा रहा था। तभी उसे उसकी सौतेली माँ के फोन की याद आई और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करके निकलने की सोचने लगा था। सो वो जल्दी से बाहर आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुका था। अकरम रिया को भी ले आया था। वो पहले से काफी बेहतर लग रही थी और बस थोड़ी सी कमजोरी उसे महसूस हो रही थी। अबीर ने अपने सर्वेंट को सख्त ऑर्डर दे दिए थे कि अकरम और रिया उनके मेहमान हैं, तो उनकी खातरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और वो जिस वक्त जो कहें वही खाना उन्हें बना कर देना। किसी भी तरह की नाकामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अबीर की आंखें बार बार सीढ़ियों की ओर उठ रही थी। शायद वो जोया को ही ढूंढ रही थी। रिया उसे किसी को ढूंढता हुआ देख चुकी थी और तभी अबीर और अकरम को देखकर रिया ने कहा था, अकरम जोया कहाँ है? उसने कल से कुछ नहीं खाया है। उसका ज्यादा देर भूखा रहना सही नहीं होगा। आप प्लीज जाकर उसे देखें। तब अकरम रिलैक्स्ड, रिया तुम्हें नाश्ते के लिए लाने से पहले मैं जोया को बुलाने ही रहा था, वो बस आ ही रही है। तब तक तुम शुरू करो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। रिया उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और अकरम के द्वारा दिया गया सूप एक छोटी सी चम्मच से पीने लगी थी। अबीर भी हल्का सा मुस्कुराकर साइड में रखा फ्रूट कस्टर्ड लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगा था कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी जहाँ से जोया चलते हुए आ रही थी।
अबीर उसे बेख्याली से देखता रहा था। उसे एहसास ही नहीं रहा था कि इस वक्त वो कहाँ बैठा हुआ है और क्या कर रहा है। वो तो उसे देखने में एकदम खो सा गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसके चारों ओर गिटार बजने लगे हों। जोया और दिनों से हटकर आज काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। अबीर की तो मानो सांसें ही थम सी गई थीं। उसे आज कुछ अलग ही हटकर एहसास हो रहा था और इससे प्यारा एहसास उसे आज तक नहीं हुआ था। जोया अकरम और रिया को देखकर हल्की सी स्माइल करने लगी थीं और जब केवल दो सीढ़ियां उतरनी और रह गई थीं तब उसकी नज़र अबीर पर पड़ी थी और कुछ देर वो भी उसे देखती रहीं। जोया को वही सीढ़ियां पर रुका देख अकरम ने कहा था, क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गई? आओ जल्दी, कुछ खा लो। अकरम की आवाज़ से वो और अबीर दोनों बेख्याली से बाहर आ निकले थे। रिया उन दोनों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और उन दोनों को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। जोया ने अपना सिर झटका और जल्दी से टेबल तक आ गई। अबीर सबकी नज़रें बचाकर चोरी चोरी अभी भी उसे ही देख रहा था। जोया समझ चुकी थी कि अबीर उसे देख रहा है। जोया सबसे पहले रिया से मिली और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा। रिया ने कहा कि वो अब ठीक है। तभी जोया रिया के बराबर में बैठ गई और एक तरफ कुछ कटे हुए फ्रूट्स रखे थे, वो उनमें से एप्पल को स्लाइस उठाकर खाने लगी थीं। तभी अकरम ने उसका ग्लास जूस से भर दिया था, लेकिन जोया ने साफ इनकार कर दिया और बोली, भाई प्लीज मुझे ये जूस वूस नहीं पीना है, प्लीज आप फोर्स ना करें। तब अकरम, लेकिन बेटा प्रोटीन्स एंड विटामिन्स आपके लिए बेहद जरूरी है, जो ये सब खा पीता ही आएंगे, आप खाओ प्लीज। जोया, लेकिन भाई। तब अकरम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, खाओ फटाफट, साबाश। अबीर जोया और अकरम का प्यार भरा आर्ग्यूमेंट्स काफी इंजॉय कर रहा था। जोया की एक एक अदा उसे अंदर तक लुभा रही थी और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अबीर के फोन पर एक एसएमएस आया। एसएमएस पढ़ते ही अबीर के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई थी। जोया ने अबीर का चेहरा देखकर अंदाजा लगा लिया था कि जरूर कुछ बात है, लेकिन फिर उसने सोचा उसे न क्या लेना देना अबीर राठौड़ की चिंता से। ये सोचकर वो अपना बाहर निकलने का प्लान बनाने लगी थीं। अबीर को उसकी सौतेली माँ का एसएमएस आया था जिसमें लिखा था, बेटा जल्दी आओ। ये पढ़ते ही वो परेशान हो चुका था कि आखिर ऐसा क्या काम हो सकता है इस औरत को जो मुझे बार बार बुला रही है। ये सोचकर अबीर नाश्ते की टेबल से उठ गया और अकरम से बोला, अकरम जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत है तो बस एक बार किसी भी सर्वेंट से कह दीजिएगा, ओके, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अबीर ऐसा कहकर जोया को एक बार फिर अपनी आंखों में बसाकर वहां से निकल गया था। प्लीज 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 गाइज, स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।